दूसरी परंपरा के अन्वेषक डॉक्टर नामोर सिंह। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षकों में डॉक्टर नामोर सिंह का विशिष्ट स्थान है। रचना विशेष के ऐतिहासिक संदर्भ, उसमें अंतर्निहित विचारधारा तथा उसके रूपबंध और कला चेतना को परखने की आपकी क्षमता निर्विवाद है। आपकी प्रथम कृति हिंदी के विकास में अभ्रंश का योग 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। शोध कृति होने पर भी इसमें तथ्यान्वेषण की तुलना में आपकी प्रगतिशील समीक्षा दृष्टि भी उभर कर सामने आई थी। तब से लेकर आज तक निरंतर आप हिंदी समीक्षा के केंद्र में रहे हैं। आपकी प्रगतिशील समीक्षा दृष्टि के समुचित मूल्यांकन के लिए आपकी प्रत्येक कृति को सामने रखकर विचार करना आवश्यक है। हिंदी के विकास में अभ्रंश का योग के अध्ययन से स्पष्ट है कि आपने अभ्रंश के कवियों और हिंदी साहित्य के आदिकालीन प्रवृत्तियों का विवेचन एक प्रगतिशील मार्क्सवादी विचारक की हैसियत से किया है। जैन कवियों द्वारा वर्णित राम कथा के संबंध में आपने लिखा है, इन्होंने अति मानवीय प्रसंगों को बुद्धिसंगत और मानवीय रूप देने की चेष्टा की है, जैसे गंगा उत्पत्ति, वानरों की उत्पत्ति, रावण का दशानन होना आदि। इसी तरह रावण के चरित्र को जैन कवियों ने अधिक पराक्रम युक्त दिखाया है और शूर्पणखा का चरित्र अपेक्षाकृत उज्ज्वल चित्रित किया है, यहाँ तक कि स्वयंभू ने उसका नाम चंद्रनखी दिया है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल में दो स्पष्ट विरोधी साहित्यिक प्रवृत्तियां प्रचलित थी। एक प्रवृत्ति यह थी जो क्रमशः क्षीयमाण थी, दूसरी वह थी जो क्रमशः वर्धमान थी। पहली का संबंध राजस्तुति, सामंतों के चरित्र वर्णन, युद्ध वर्णन, कीली विलास, बहुविवाह के लिए विजोन्माद आदि से था और दूसरी का संबंध नीची समझे जाने वाली जातियों के धार्मिक असंतोष, रूढ़ विरोध, बयाडम्बर खंडन, जातिभेद की आलोचना, उच्चतर आचार, व्यापक भगवत प्रेम, मानवीय गौरव आत्मगौरव से था। एक का नाम तथाकथित वीरगाथा काव्य है और दूसरी का तथाकथित योगधारा। जैन कवियों द्वारा वर्णित राम कथा में अति मानवीय प्रसंगों को बुद्धिसंगत रूप देने की प्रवृत्ति और आदिकालीन हिंदी साहित्य की क्षीयमाण और वर्धमान प्रवृत्तियों को लक्षित करके नामोर सिंह ने अपनी प्रगतिशील समीक्षा दृष्टि का परिचय दिया है। कहना न होगा कि इस समय प्रगतिशील आंदोलन संकट के दौर से गुजर रहा था। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक प्रकाशित हो चुका था। उन पर प्रयोगवादी होने का आरोप लग चुका था। वे यह स्पष्ट कर चुके थे कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। प्रयोग तो सत्य के साक्षात्कार और उसकी अभिव्यक्ति का साधन है। वस्तु और शिल्प दोनों में प्रयोग फलप्रद होता है। इस संदर्भ में उनकी दूसरा सप्तक की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी परिस्थिति में साहित्य के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना और उस पर दृढ़ रहना साहस का कार्य था। सन 1955 में आपकी छायावाद पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें छायावाद के काव्य सौंदर्य का विवेचन करते हुए आपने प्रतिपादित किया है, यह सारा सौंदर्य व्यक्ति की स्वाधीनता की भावना से उत्पन्न हुआ है और वह स्वाधीनता भी व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण समाज की स्वाधीनता की अभिव्यक्ति है। छायावाद के स्थायित्व पर का आधार स्पष्ट करते हुए आपने कहा, छायावाद का स्थायित्व उसके व्यक्तिवाद में नहीं, उसकी आत्मीयता में है। काल्पनिक उड़ान में नहीं, आत्म प्रसार में है। समाज भीरुता में नहीं, प्रकृति प्रेम में है। प्रकृति पलायन में नहीं, नैसर्गिक जीवन की आकांक्षा में है। आवेगपूर्ण भावोच्छ्वास में नहीं, संवेदनशीलता में है। सौंदर्य की कल्पना में नहीं, सौंदर्य की भावना में है। स्वप्न में नहीं, स्वप्न की वास्तविक आकांक्षा में है। अज्ञात के जिज्ञासा में नहीं, ज्ञान के प्रसार में है। आदर्श में नहीं, यथार्थ में है। कल्पना में नहीं, वास्तविकता में है। दृष्टिकोण में नहीं, दृष्टि में है। उक्ति वैचित्र में नहीं, अभिव्यंजना के प्रसार में है। छायावाद के स्थायित्व और उसके आधार को स्वीकार करते हुए नामोर सिंह ने अनुभव किया था कि इस काव्यगत स्वाधीनता को तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम के साथ मिलाकर देखने में पता चलता है कि छायावाद में स्वाधीनता संग्राम के कुछ पहलू छूट गए हैं और कहीं कहीं छाया भी बहुत धुंधली और मूल से बहुत दूर चली गई है। कहना न होगा कि इस छाया में मूल की और कल्पना में वास्तविकता की खोज नामोर सिंह की प्रगतिशील दृष्टि का ही परिणाम है। सन 1957 में आपकी इतिहास और आलोचना पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें सन 1952 का लिखा हुआ एक निबंध है, इतिहास का नया दृष्टिकोण। इतिहास का नया दृष्टिकोण अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण की विशेषता है इतिहास के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग। इस प्रणाली की विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हुए नामोर सिंह ने लिखा है, द्वंद्वात्मक प्रणाली की पहली विशेषता है किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार को अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों के अविभाज्य प्रसंग में देखना। दूसरी विशेषता है वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों को गतिशील, परिवर्तनशील और क्रमबद्ध रूप में देखना। चौथी विशेषता है वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों में असंगति अथवा अंतर्विरोध को पहचानना। नामोर सिंह ने इतिहास किसी द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की संक्षिप्त समीक्षा भी की है। उन्होंने आचार्य शुक्ल के इतिहास की कमजोरियों को लक्षित करते हुए कहा है कि इसमें हिंदी साहित्य को पूर्ववर्ती साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं के समसामयिक साहित्य से विच्छिन्न करके देखा गया है और वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं एवं विचारों में असंगति अथवा अंतर्विरोध को नहीं पहचाना गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाववादी दृष्टि से इतिहास की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। इसी पुस्तक में एक निबंध कलात्मक सौंदर्य का आधार है। यह निबंध 1953 में लिखा गया है। इसमें प्रयोगवादी कविता के संदर्भ में नामोर सिंह ने कहा है, प्रयोगों में सारा नया रूप विधान, नए रागात्मक संबंधों के नाम पर केवल समाज निरपेक्ष मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिक बीमारियों का सहानुभूतिपूर्ण और मोहक अलंकरण है। उन्होंने काव्य के विषय वस्तु को महत्व देने पर बल दिया है और कहा है, साहित्य में विषय वस्तु पर बल देने का अर्थ है यथार्थ जगत के सत्य का पूर्ण और गहरा ज्ञान। जो लोग व्यक्ति स्वातंत्र का नारा देते हैं उनकी चर्चा करते हुए नामोर सिंह कहते हैं कि सामूहिक स्वातंत्र में ही सच्चा व्यक्ति स्वतंत्र है, इस सत्य को वे नहीं समझ पाते। ऐसे साहित्यकारों का मार्क्सवाद भी अमूर्त होता है क्योंकि जनता को यथार्थ शक्ति से उनका परिचय नहीं होता। इस पूरे निबंध में नामोर सिंह ने व्यक्तिवाद का निषेध किया है और सामाजिक यथार्थ के चित्रण पर बल दिया है। सन 1962 ईस्वी के आसपास नामोर सिंह की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां प्रकाशित हुई। इसमें आधुनिक साहित्य की चार प्रमुख प्रवृत्तियों छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन किया गया है। छायावाद के संबंध में नामोर सिंह के विचारों का अनुशीलन हम उनकी स्वतंत्र पुस्तक के आधार पर कर चुके हैं। अतः यहाँ रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के संबंध में उनके विचारों की व्याख्या ही अभिष्ट है। रहस्यवाद संबंधी विवेचन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नामोर सिंह ने पहली बार मध्ययुगीन संतों के रहस्यवाद और यूरोपीय प्रतीकवादी रहस्यवाद से हिंदी के आधुनिक रहस्यवाद की भिन्नता उनके सामाजिक आधार को दृष्टि में रखकर प्रतिपादित की है। आपने स्पष्ट किया है कि मध्ययुगीन संतों का रहस्यवाद प्रायः जाति प्रथा, ऊंच नीच के विचार, पुरोहितों के अत्याचार, सामंत शोषण के विरुद्ध विद्रोह से जुड़ा है। आधुनिक यूरोप का रहस्यवाद पूंजीवादी संध्या के हताश मध्यवर्ग की यथार्थ भीरु प्रतिक्रियावादी विचारधारा से पोषित है, जबकि भारत के दूसरे दशक का रहस्यवाद अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की जीवन दृष्टि का अंग है। जाहिर है कि नामोर सिंह का यह विश्लेषण उनकी प्रगतिशील साहित्य दृष्टि का ही परिणाम है। प्रगतिवाद पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में भेद करना उचित नहीं है। प्रगतिवाद का उद्भव और विकास अपनी ही सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हुआ है। प्रगतिशील साहित्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, प्रगतिशील साहित्य कोई स्थिर मतवाद नहीं बल्कि यह एक निरंतर विकासशील साहित्य धारा है जिसके लेखकों का विश्वास है कि प्रगतिशील साहित्य लेखक की स्वयंभू अंतःप्रेरणा से उद्भूत नहीं होता बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के क्रम में वह भी परिवर्तित और विकसित होता रहता है और उसके सिद्धांत उत्तरोत्तर स्पष्ट तथा अधिक पूर्ण होते चलते हैं। आपने लक्षित किया है कि प्रगतिवाद के इन 20 वर्षों का इतिहास साहित्य में स्वस्थ सामाजिकता, व्यापक भावभूमि और उच्च विचार के निरंतर विकास का इतिहास है जो केवल राजनीतिक जागरण से आरंभ होकर क्रमशः जीवन की व्यापक समस्याओं की ओर, आदर्शवाद से आरंभ होकर क्रमशः यथार्थ की ओर और यथार्थवाद नग्न यथार्थवाद से आरंभ होकर क्रमशः स्वस्थ सामाजिक यथार्थ की ओर अग्रसर होता जा रहा है। प्रयोगवाद के संबंध में आपने अपना दो टूक निर्णय देते हुए कहा कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। उसके 15 वर्षों का इतिहास व्यक्तिवाद के दो सीमांतों के बीच फैला हुआ है। इनमें से एक सीमांत है मध्यवर्गीय परिवेश के प्रति मध्यवर्गीय कवि का वैयक्तिक असंतोष और दूसरा सीमांत है जनजागरण से डरे हुए कवि की आत्मरक्षा की भावना। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है और विभिन्न राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक मान्यताओं के रूप में यह संकीर्ण व्यक्तिवाद अपने को व्यक्त करता रहता है। प्रयोगवाद में शामिल कवियों में नेवी चंद्र जैन, मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल की विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हुए आपने कहा, अज्ञेय की तरह इन कवियों में भी घोर असंतोष था, किंतु अज्ञेय के विपरीत इन कवियों में अपनी मुक्ति के लिए नवीन जन आंदोलन से तादात्म्य स्थापित करने की आकांक्षा भी थी। इसीलिए इन कवियों में अज्ञेय के असंतोष से थोड़ा भिन्न एक नए ढंग की कश्मकश दिखाई पड़ती है। यह कश्मकश है संस्कार और विवेक की आत्मस्थ होने की चाह की, असमर्थता और विवेक द्वारा चीर डालने की कश्मकश। नेमी और मुक्तिबोध में यह कश्मकश अधिक तीव्र तथा मार्मिक है, और इन दोनों कवियों में भी मुक्तिबोध में सक्रिय जीवन शक्ति और अधिक है। प्रयोगवाद के विकास क्रम में थोड़ा बाद में आने वाले दो कवियों शमशेर और रघुवीर सहाय में भी रवि नामोर सिंह ने नेमी और मुक्तिबोध वाला अंतर्द्वंद लक्षित किया, किंतु दोनों में सूक्ष्म भेद यह बताया कि रघुवीर सहाय में यह अंतर्द्वंद मर्मस्पर्शी दर्द और शक्ति अर्जित करने की वास्तविक आकांक्षा के रूप में व्यक्त होता है, जबकि शमशेर में यह स्पष्टतः विभाजित दो व्यक्तियों के रूप में स्थायी बन गया है, जिसमें अपने अपने ढंग से जन्मादि और वैयक्तिक दो प्रकार की भावनाएं कविता का रूप ले लिया करती हैं। निसंदेह एक कोरे कर्तव्य पालन के रूप में और दूसरी अनुभूति प्रवणता के रूप में। यहाँ इतना लंबा उदाहरण देने की आवश्यकता इसलिए हुई कि डॉक्टर रामविला शर्मा ने भी मुक्तिबोध और शमशेर की कश्मकश का उल्लेख किया है। उनके अनुसार मुक्तिबोध के भीतरी तनाव का कारण उन पर अनेक भाववादी रूमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक की संगति का न बैठ पाना है। कुछ भी हो, प्रयोगवाद के मूल में चरम भक्तिवाद की सत्ता स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, कुल मिलाकर प्रयोगवादी कविताएं ह्रासोन्मुखी मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्र हैं। इनमें मध्यवर्गीय हीनता, दीनता, अनास्था, कटुता, अंतर्मुखता, पलायन आदि का मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरी बात यह है कि इन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता न तो उन्हें स्वयं मालूम है और न ये दूसरों को ही बतला सकते हैं। नामोर सिंह नई कहानी के भी मर्मी समीक्षक हैं। उनकी कहानी नई कहानी पुस्तक में 1958 से 1965 ईस्वी के बीच लिखे गए कहानी समीक्षा संबंधी निबंध संग्रहित हैं। इन निबंधों के बीच में से नामोर सिंह ने एक व्यापक समीक्षा पद्धति, ऐसी पद्धति जो कविता से इतर कथा नाटक आदि साहित्य रूपों का विधिवत विश्लेषण कर सके, विकसित की है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उभरने वाले प्रथम दौर और सन 1959-60 के आसपास उभरने वाले दूसरे दौर की कहानियों की समीक्षा विशेष रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। नामोर सिंह ने इन दोनों दौर की कहानियों के भावबोध और संवेदना का अंतर परिवर्तित सामाजिक संदर्भ में लक्षित और विश्लेषित किया है। नए कहानीकारों के संबंध में आपने कहा है, चूंकि नए कहानीकार किसी पूर्व निर्धारित जीवन दर्शन द्वारा निर्दिष्ट सामाजिक दायित्व के ही आधार पर रचना में सामाजिकता को व्यक्त करने की कोशिश करते रहे हैं, इस दृष्टि से यह तो सत्य है कि प्रगतिवादी दौर की तरह इन कहानियों में सर्वहारा का चित्र नहीं है और न वैसे प्रखर वर्ग चेतना ही है, किंतु व्यापक रूप से आज के उपेक्षितों और कल के उपेक्षितों के साथ आत्मीय लगाव अवश्य है, किसी लेखक में कम तो किसी में ज्यादा। चूंकि ज्यादातर लेखक शहरी और गांवों के निम्न मध्यवर्ग की उपज हैं और हर लेखक का जोर साहित्य रचना में निजी अनुभव पर है, इसलिए रचनाओं की विषय वस्तु के साथ ही दृष्टिकोण का भी निम्न मध्यवर्गीय सामाजिक स्थिति की सीमा में सीमित होना अनिवार्य है। वैसे आज समाज के इस वर्ग की जो स्थिति और ऐतिहासिक भूमिका है उसको देखते हुए इस वर्ग का सचेत लेखक प्रखर आलोचनात्मक यथार्थवादी साहित्य की सृष्टि कर सकता है। कहना न होगा कि नई कहानी की परंपरा में सामाजिक आलोचना का यह स्वर काफी प्रबल रहा है। कहानी नई कहानी पृष्ठ संख्या 224। उपर्युक्त समीक्षात्मक टिप्पणी में रचना में सामाजिकता को व्यक्त करने की कोशिश उपेक्षितों के साथ आत्मीय लगाव तथा प्रखर आलोचनात्मक यथार्थ की सृष्टि की संभावना को लक्षित और संकेतित करके नामोर सिंह ने अपनी यथार्थोन्मुखी समीक्षा दृष्टि का परिचय दिया है। सितंबर सन 1964 ईस्वी में नामोर सिंह ने मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण कृति एक साहित्य की डायरी की समीक्षा की। इस समीक्षा में उन्होंने यह स्थापित किया कि डायरी की सबसे बड़ी उपलब्धि एक विलक्षण व्यक्तित्व है जो अंततः पूरी डायरी से उभर कर सामने आता है। विवेचना संकलन पृष्ठ संख्या 117। इस डायरी में उभरने वाले विलक्षण कवि व्यक्तित्व की बगल में अज्ञेय के आत्मने पद से उभरने वाले कवि व्यक्तित्व को रखकर नामोर सिंह ने मुक्तिबोध की काव्य वैशिष्ट को उजागर किया है। वे कहते हैं, अज्ञेय की आत्मने पद से बहुत कुछ एक शब्द साधक स्थित अथवा सौंदर्य जीवी का रूप सामने आता है, जो एक दायरे में जीवन से पूरी तरह संसक्त होते हुए भी अपने रचना जगत में सर्वथा निसंग है। अमानुषिकता की हद को छूने वाली कलात्मक निसंगता, इसके विपरीत मुक्तिबोध की डायरी में उभरने वाला कवि व्यक्तित्व सामाजिक स्तर पर एक नितांत सामान्य निम्न मध्यवर्गीय पारिवारिक प्राणी है, जिसके लिए कविता अलग से किसी साधना की चीज नहीं बल्कि जीने की जटिल प्रक्रिया का ही एक सहज अंग है, जो समाज से लड़ते हुए भी उसकी सहकारिता को संबल के रूप में स्वीकार करता है। जितना कष्टप्रद उसका अस्तित्व संघर्ष है, उतना ही कष्टप्रद सर्जन संघर्ष, और जो अपने निजी पीड़ा को व्यापक मानवीय पीड़ा से अर्थपूर्ण बनाता चलता है। अपनी तुलना को निर्णयात्मक स्वर देते हुए नामोर सिंह कहते हैं, कुल मिलाकर मानवीय नितांत मानवीय मुक्तिबोध ने डायरी में जिस प्रकार समकालीन साहित्य के प्रचलित एस्थिट के विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्तित्व पर प्रहार किया है, उसे साफ मालूम होता है कि वे एक स्थापित कवि प्रतिभा के स्थान पर साहित्य में एक नए व्यक्तित्व की 1968 ईस्वी में नामोर सिंह की प्रसिद्ध कृति कविता के नए प्रतिमान प्रकाशित हुई। इसकी भूमिका में नामोर सिंह ने लिखा, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। वस्तुतः नामोर सिंह ने जब मुक्तिबोध की रचना एक साहित्यिक की डायरी की समीक्षा की थी, तभी उन्हें स्पष्ट हो गया था कि जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती है, उसके केंद्र में अज्ञेय नहीं मुक्तिबोध है। कविता के नए प्रतिमान में उन्होंने अपनी पूर्व मान्यता को नए प्रतिमानों की मीमांसा के रूप में स्थापित किया। पुस्तक में दो खंड है। स्वयं लेखक के साक्ष्य पर कहा जा सकता है कि प्रथम खंड में विशेषतः तार सप्तक, कामायनी, उर्वशी आदि कृतियों और सामान्यतः छावादोत्तर कविता की उपलब्धियों को लेकर पिछले दो दशकों में जो विवाद हुए हैं, उनमें टकराने वाले मूल्यों की पड़ताल की गई है, और इसी प्रसंग में नए दावे के साथ प्रस्तुत रस सिद्धांत की प्रसंगानुकूलता पर भी विचार किया गया है। दूसरे खंड में कविता के नए प्रतिमान के नाम पर प्रस्तुत अनुभूति की प्रामाणिकता, ईमानदारी, जटिलता, द्वंद्व, तनाव, विसंगति, विडंबना, सृजनात्मक भाषा, बिंबात्मकता, सपाट बयानी, फैंटेसी, नाटकीयता आदि आलोचनात्मक पदों की सार्थकता का परीक्षण किया गया है। सबसे पहले अनुभूति की प्रामाणिकता और ईमानदारी को ले अनुभूति की सच्चाई का प्रश्न पहले भी उठाया गया था। आचार्य शुक्ल ने स्वयं छायावादी कवियों की रहस्यानुभूति की सच्चाई पर संदेह किया था। अनुभूति की सच्चाई कविता की श्रेष्ठता की द्योतक पहले भी मानी जाती थी। नई कविता के संदर्भ में डॉक्टर जब नामोर सिंह ने इसे एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया तो उन्होंने मुक्तिबोध के कथन का सहारा लिया। मुक्तिबोध ने कहा था, व्यक्तिगत ईमानदारी वहां लक्षित होगी जहां वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए लेखक इस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्य तत्व का आविर्भाव नहीं होगा। इस उद्धरण के बाद नामोर सिंह की टिप्पणी है, इस प्रकार मुक्तिबोध ने ईमानदारी को आत्मनिष्ठता के दलदल से निकालकर वस्तुनिष्ठता की ठोस भूमि पर प्रतिष्ठित किया और ईमानदारी में सत्यता के प्रश्न को जोड़कर मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक औजार प्रदान किया। अनुभूति की जटिलता और तनाव में के प्रतिमान के सामाजिक संदर्भ की ओर संकेत करते हुए नामोर सिंह कहते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए भी कविता में आज द्वंद्व और संघर्ष के मूल्य पर जोर देना अप्रासंगिक नहीं है। आज संघर्ष से घबराने वाले वही होंगे जो सत्ताधारी वर्ग के साथ यह सोचते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जीवन में सारे संघर्षों का अंत हो गया। तात्पर्य यह है कि नई कविता में जो अनुभूति की जटिलता और तनाव है, उसका कारण रचनाकारों की संघर्ष चेतना और रचना की संघर्ष मूलकता है। यहां भी नामोर सिंह को मुक्तिबोध याद आते हैं और वे नई कविता के आत्मसंघर्ष से उनका यह कथन उद्धृत करते हैं। काव्य या तो बाह्य जीवन जगत के साथ सामंजस्य में या उसके अनुकूल उपस्थित होता है, अथवा उसके साथ द्वंद्व रूप में प्रस्तुत होता है, अथवा काव्य प्रवृत्ति एक स्तर या क्षेत्र में सामंजस्य और दूसरे स्तर या क्षेत्र में द्वंद्व को लेकर प्रस्तुत होती है। संक्षेप में, काव्य अभ्यंतर या बाह्यकरण विश्वव्यापी सामंजस्य या द्वंद्व अथवा दोनों के भिन्न रूप में उपस्थित होता है। आज की नई कविता में उक्त सामंजस्य से अधिक द्वंद्व ही है, इसलिए उसके भीतर तनाव या घिराव का वातावरण है। नई कविता के संदर्भ में बहुचर्चित प्रतिमान विसंगति और विडंबना के सूत्रों को पूर्ववर्ती काव्य परंपरा से जोड़ते हुए नामोर सिंह उसकी स्थिति निराला का शोक गीत सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता में लक्षित करते हैं, और उसके बाद रामलीला शर्मा की कविता सत्यम शिवम सुंदरम, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश, रघुवीर सहा की कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध तथा श्रीकांत वर्मा प्रभाकर माचवे, कुंवर नारायण, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारती और धूमिल आदि सभी कवियों में उसकी पूरी परंपरा की विस्तार से चर्चा करते हुए अंत में मुक्तिबोध पर आते हैं और कहते हैं, मुक्तिबोध की चंबल की घाटी में और अंधेरे में जैसी भयावह त्रासदीय रंग की नाटकीय कविताओं के अंतर्गत काले बादलों को चीर कर बिजली की गोंद के समान हल्के फुल्के संक्षिप्त प्रसंग झलक जाते हैं, जिनसे विडंबना के सृजनात्मक उपयोग का गहरा एहसास होता है। विसंगति और विडंबना को कविता के प्रतिमान के रूप में महत्व न मिलने का कारण नामवर सिंह की दृष्टि में यह है कि एक तो ये कविताएं रोमानी सुरुचि के आलोचकों के लिए ज्यादा तेज पड़ती हैं, दूसरे इन कविताओं में एक प्रकार की आक्रामकता है। इस आक्रामकता को नामवर सिंह साहित्यतर कारण मानते हैं और कहते हैं, कविता के प्रतिमान में जब तक यदि इस क्रीड़ा भाव से उत्पन्न होने वाली विडंबना को उचित स्थान नहीं मिला तो साहित्यिक कारणों से अतिरिक्त एक साहित्येतर कारण भी है, और वह है इन कविताओं की आक्रमण क्षमता का भय। प्रयोगशील नई कविता में भाषा को मात्र माध्यम न मानकर कवि की बोध शक्ति का प्रमाण माना गया, इसीलिए काव्य भाषा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ और भाषिक विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। काव्य भाषा कवि की सृजनात्मक क्षमता का प्रतिमान बन गई। नामवर सिंह ने भी काव्य भाषा के प्रतिमान को महत्व देते हुए उस पर गंभीरता से विचार किया, किंतु यहाँ भी वे मात्र भाषिक विश्लेषण तक ही नहीं रुक गए। उनके अनुसार शब्द प्रयोग की सार्थकता संदेह से परे है, ये तो उसके साथ अनुभव खंड या जीवन की वास्तविकता भी संपृक्त है। यदि कथ्य की अपेक्षा करके कथन तक ही अपने को सीमित कर लिया गया तो सारे विवेचन के रूपवादी हो जाने का खतरा है। वे कहते हैं, कथ्य को कथन के रूप में निशेष कर देने में निसंदेह आलोचना के अंतर्गत रूपवादी रुझान का खतरा है, क्योंकि कुछ आलोचक कथन की भाषागत विशेषताओं के विश्लेषण को ही समुची काव्यकृति का विश्लेषण समझने की भूल कर सकते हैं, किंतु जो जागरूक समीक्षक शब्द के गिर्द बनने वाले समस्त अर्थवृत्तों तक फैलते जाने का विश्वासी है, वह संदर्भ के अनुसार शब्द में निहित सभी अर्थापत्तियों को पकड़कर काव्य भाषा के आधार पर ही काव्य का पूर्ण मूल्यांकन कर सकता है, जिसमें उसका नैतिक मूल्यांकन भी निहित हो। जहां तक बिंब और प्रतीक का संबंध है, नामवर सिंह इन्हें प्रतिमान के स्तर पर विशेष महत्व नहीं देते। नई कविता के दौर में काव्य बिंब के प्रचलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि छायावाद के अंत में जब कविता भाव से विचार की ओर, कल्पना से वास्तविकता की ओर मुड़ी तो कविता में वक्तव्य देने की बाढ़ आ गई। इसके बाद नई कविता में जब लघु मानव और क्षण के दर्शन के सहारे नए मानव और नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया जाने लगा तो फिर वक्तव्यवादी कविताओं की बाढ़ आ गई। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तीसरे सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह ने घोषित किया कि कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिंब विधान पर। बिंब विधान का संबंध जितना काव्य की विषय वस्तु से होता है उतना ही उसके रूप से भी। विषय को वह अमूर्त, मूर्त और ग्राह्य बनाता है, रूप को संक्षिप्त और दीप्त। इस प्रकार नई कविता में बिंब आया तो एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, किंतु आगे चलकर सायास बिंब योजना का परिणाम यह हुआ कि आलोचकों का ध्यान समूची कविता पर न जाकर कुछ चमकते हुए बिंबों पर ही केंद्रित हो गया। अंग्रेजी साहित्य का हवाला देते हुए नामवर सिंह कहते हैं, अंग्रेजी साहित्य में इधर बिंब विधान के विरुद्ध इतनी गहरी प्रतिक्रिया हुई कि अब उसे आलोचना के भाषा से निकाल देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। अपने पूरे विवेचन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं, निष्कर्ष यह कि कविता बिंब का पर्याय नहीं है। सामान्यतः जिसे बिंब कहा जाता है उसके बिना भी कविताएं लिखी गई हैं, और वे बिंब धर्मी कविताओं से किसी भी तरह कम अच्छी नहीं कही जा सकती। बिंबों पर अधिक बल देने से बोलचाल के सहज लय खंडित हुई है, क्रियाएं उपेक्षित हुई हैं, विशेषणों का भार अनावश्यक रूप से बढ़ा है और काव्य कथ्य की ताकत कम हुई है। नामवर सिंह मानते हैं कि इन कमजोरियों को दूर करने के लिए ही कविता में तथाकथित सपाट बयानी अपनाई जा रही है। नामवर सिंह ने नई कविता की संरचना पर भी विचार किया है। उनके अनुसार नई कविता की संरचना दो प्रकार की है, प्रगीतात्मक और नाटकीय। नई कविता के मूल्यांकन क्रम में लंबी नाटकीय कविताएं उपेक्षित रह गई हैं। प्रगीतात्मक कवियों की रचना भी संरचना भी कई तरह की है। निराला के प्रगीतों का विन्यास अखंड है, उनकी कला समग्रता में है। माँ देवी के गीतों में तार्किक अनुवृत्ति पर विशेष बल दिया गया है। पंत के प्रगीतों में खंडचित्र है। नई कविता की संरचना स्फटिक या क्रिस्टल जैसी ठोस और घनी है। लंबी कविता भी प्रगीतात्मक हो सकती है। अज्ञेय या साधवीड़ा आकार में लंबी होने पर भी भावबोध के स्तर पर अनुचिंतनात्मक और उसकी संरचना भी वर्तुलाकार है। प्रगीतात्मक कविताओं में से भिन्न मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में नाटकीय एकालाप है। इसकी पटलभूमि विशाल है, यह स्वप्न चित्रों की एक लड़ी है। इसमें फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर इस कविता का संसार एक साथ ही दहशत भरा और उम्मीद भरा दोनों ही है। यह फैंटेसी का दोहरा प्रयोग है। कवि ने यथार्थ पर अंधेरे की एक चादर डालकर उसके अंदर से एक जीती जागती स्पष्ट गोचर दुनिया को उभार कर रख दिया है, जो यथार्थ से भी अधिक यथार्थ मालूम होती है। इसी क्रम में नामोर सिंह ने फैंटेसी के शिल्प पर भी विचार किया है। फैंटेसी के प्रयोग से कथा चित्रात्मक और सघन हो जाती है, साथ ही देश और काल की दृष्टि से और संबद्ध वस्तुओं को भी एक साथ एकत्र रखा जा सकता है। नामोर सिंह यह मानते हैं कि फैंटेसी का शिल्प और यथार्थवादी है, किंतु वे यह भी मानते हैं कि भाववादी शिल्प के अंतर्गत भी जीवन के समझने की दृष्टि यथार्थवादी हो सकती है। यहाँ भी वे मुक्तिबोध का ही आधार लेते हैं। कमायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने कहा है, यथार्थवादी शिल्प और यथार्थवादी दृष्टि में अंतर है। यह बहुत ही संभव है कि यथार्थवादी शिल्प के विपरीत जो भाववादी शिल्प है, उस शिल्प के अंतर्गत जीवन को समझने की दृष्टि यथार्थवादी रही हो। नामोर सिंह द्वारा स्थापित इन प्रतिमानों के संदर्भ में एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि मुक्तिबोध के केंद्र में रखते हुए भी उन्होंने इनके सूत्र को पूर्ववर्ती काव्य में लक्षित किया है। इनके आधार पर अन्य नए कवियों की रचनाओं की समीक्षा की है और इन्हें समसामयिक राजनीतिक संदर्भ से जोड़ने की कोशिश भी की है। इस समीक्षा क्रम में उनका ध्यान निरंतर कलात्मक उपादानों के विवेचन के माध्यम से जीवन यथार्थ को उद्घाटित करने पर केंद्रित रहा है। रस की प्रासंगिकता के संदर्भ में नामोर सिंह यह मानते हैं कि रस का निर्णय अर्थमीमांसा पर निर्भर करता है। अर्थगत मतभेद के कारण छंद विशेष के रस निर्णय में मतभेद दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने रस के प्रतिमान को महत्व देते हुए अर्थमीमांसा पर भी बल दिया था। डॉक्टर नगेंद्र के रस सिद्धांत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं, यह आकस्मिक नहीं है कि जिस रस सिद्धांत नामक ग्रंथ में रस को शाश्वत एवं सार्वभौम काव्य सिद्धांत बनाने के लिए जैसे आकाश पताल एक कर दिया गया है, उसी में संपूर्ण अर्थमीमांसा तो दरकिनार ध्वनि पर भी एक अध्याय नहीं है। सभी जानते हैं कि संस्कृत काव्यशास्त्र में अंतिम रूप से रस की प्रतिष्ठा रस ध्वनि के रूप में हुई है, इसलिए ध्वनि के बिना रस की स्थापना निराधार है।